एक तो है शक्ति, तो जब शक्ति होता है शक्ति के पीछे कोई व्यक्ति रहता है, व्यक्ति बिना शक्ति होता है? कहीं भी देखा है व्यक्ति बिना शक्ति? जैसे ये लाइट है, लाइट शक्ति है, बल्कि ये लाइट कैसे आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, इसका पीछे कोई व्यक्ति ने उसको ये किया है? हाँ शक्ति है, कोई कार्य के पीछे शक्ति रहता है, शक्ति के द्वारा कार्य होता है, बल्कि शक्ति के पीछे क्या, शक्ति क्या ऐसे खुद वैसे उसका उद्भव हो सकता है शक्ति का, या कोई शक्तिमान से शक्ति का उद्भव होता है?
शक्तिमान से।
तो अब बताओ, तो ये सृष्टि के पीछे कौन है, शक्ति है या शक्तिमान है?
शक्तिमान है, जिससे कि शक्ति
उसे शक्ति है, बल्कि शक्ति के पीछे शक्तिमान है। इस भौतिक जगत कौन सी शक्ति के द्वारा इसका विस्तार हुआ है, उसे जड़ा शक्ति कहा जाता है। और ये शक्ति का, शक्ति का प्रतीक कौन है? महामाया, जैसे दुर्गा ये जगत को सृष्टि करने वाली है, महामाया दुर्गा। तो बल्कि आप प्रश्न ये है कि ठीक है, हम समझ गए हैं कि ये सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है, सृष्टि करने वाला कोई सृष्टि किया है, तो उनके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हम क्या कल्पना के द्वारा उनको जान सकेंगे? संजीव, कल्पना से नहीं, तो कैसे हम जानेंगे उसके बारे में, उनके बारे में
अध्ययन करना पड़ेगा।
यस, को अध्ययन करना है, को क्या अध्ययन करना है,
उनके बारे में किताब,
उनके बारे में जो किताब है उनको पढ़, किताबों को पढ़ना है, और कुछ किताबों के पीछे भी ये देखना है कि किताब कौन। चैतन्य स्वामी तो मीटिंग है, ऐसी पर कथा आई वो तो सही किताब पढ़ना चाहिए, किताब के द्वारा हम जान सकते हैं। और अगर जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं उन्होंने खुद अगर बताते हैं तो वही सबसे बेहतर रहता है। तो अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अगर भगवान अपने बारे में अगर कुछ बताते हैं तो वो समझना आसान होगा। ऐसा कोई ग्रंथ है जहाँ भगवान अपने बारे में बता रहे हैं? इसलिए भगवत गीता का इतना महिमा है। भारत में ऐसे कोई आस्तिक व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते हैं? भगवत गीता में ऐसे कोई साधु हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते हैं? हर साधु भगवत गीता को मानते हैं, मतलब हर व्यक्ति भगवान को स्वीकार करते हैं। एक गड़बड़ ये होता है कि शक्ति और शक्तिमान के बारे में अधिक से अधिक आदमी सोचते हैं आजकल कि ये जो है, जैसे हम बताए थे सृष्टि करने वाला, तो सृष्टि करने वाला शक्ति है, ठीक है, सृष्टि शक्ति से हुआ है, बल्कि सृष्टि ये शक्ति के पीछे कोई है, ये जिनसे ये शक्ति आ रही है वो है शक्तिमान और वो है भगवान। जैसे हम और भी विचार कर सकते हैं, देखो बाण शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसके पास है बाण, ऐसे धनवान, गुणवान, भाग्यवान, तो बाण का मतलब होता है कि जो रखता है जिसके पास है धन, जिसके पास है वो है धनवान। तो जब हम भगवान कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है?
भग शब्द भोग से बना है, जो उसका अधिकारी है,
भग जिनमें है, भग शब्द का मतलब क्या होता है?
भोग करने का अधिकारी
नहीं,
ऐश्वर्य।
भोग भोग और भग एक ही है। भग शब्द का अर्थ होता है छह ऐश्वर्य। वो छह ऐश्वर्य हैं सारे दौलत, सारे संपदा, सारे शक्ति, सारे यश, सारे श्री सुंदरता, सारे ज्ञान और सारे त्याग। ये छह कुल मिला के भग कहा जाता है। तो भग अस्ति भगवान, जिनके पास भग है वो भगवान है। तो ऐसे कोई हैं जो कह सकता है कि उनकी उसके पास सारे शक्तियां हैं, सारे संपदा हैं, सारे ज्ञान हैं, बल्कि जिनके पास है वो है भगवान। है कोई ऐसा? हाँ, वो है एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, जो एक और जिनकी कोई दूसरा नहीं, वो परम पुरुष है भगवान। और मैं जो बोला तो उनके बारे में अगर जानना है तो भगवत गीता से हमें शुरू करना होगा। तो कल से भगवत गीता की पाठ करना, भगवत गीता से शुरू करना संक्षेप में। जैसे मैं थोड़ा कुछ बता सकता हूँ भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता के भगवत गीता में पांच विषय का विचार भगवान किए हैं। वो पांच विषय हैं आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा अर्थात ईश्वर, प्रकृति अर्थात इस भौतिक जगत, काल अर्थात समय और कर्म। ये पांच विषय का विचार हुआ है। इसका शुरू हो रहा है आत्मा के विषय में। आत्मा क्या है भगवान को बता रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है, ये तो कोई इनकार नहीं करेंगे कि हम शरीर हैं। जब पूछते हैं आप कौन है, मेरा साधारण भावना ये होता है कि ये मैं हूं, बल्कि ये कौन है, ये है शरीर। बल्कि भगवान ने भगवत गीता का शुरू में कह रहे हैं ये शरीर और शरीरी, देह देही, शरीर और शरीर का मालिक। शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक है आत्मा। और जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक ही ये शरीर जिंदा रहता है। जब आत्मा चला जाता है तो क्या होता है? शरीर का मृत्यु होता है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि शरीर और शरीरी में अंतर है। शरीर है भौतिक, बल्कि शरीरी या आत्मा भौतिक है क्या? आत्मा आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक का गुण कैसी है आध्यात्मिक आत्मा का? न जायते मृत कदाचित, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी आत्मा का मृत्यु होता है। तो आत्मा जब शरीर को ग्रहण करता है तब शरीर का जन्म होता है। आत्मा जब एक नया शरीर लेता है तो शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। और शरीर का जब मृत्यु होता है तब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। यह आत्मा जब शरीर छोड़कर चला जाता है तब यह शरीर का मृत्यु होता है। ये समझना क्या कोई कठिन बात था? समझे हो तुम? तो तुम कौन हो?
वेरी गुड।
नाउ आत्मा कहां से आए?
भगवत
धाम से आए। वेरी गुड। तो आत्मा का सृष्टि इस जगत में हुआ या भगवत धाम से है? जो बुद्धिमान का विचार होगा आत्मा और किस और कहीं से आए? आत्मा यहां से आत्मा को उत्पत्ति नहीं, ये जगत जो है ये जड़ है, बल्कि आत्मा जड़ है क्या? तो मन इसलिए यहां सभी कुछ जड़ होता है, बल्कि आत्मा जड़ का विपरीत है। तो वो आत्मा ही इस शरीर का असल मालिक है। तो इस बारे में भगवान बहुत सुंदर रूप से अर्जुन को समझाया। उसके पश्चात भगवान अर्जुन को बताया ये भौतिक जगत क्या है और हम कैसे यहां पर आ गए। उसके पश्चात भगवान बता रहे हैं कि वो कौन है और कैसे हम उनके साथ संपर्क जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ और दो विषय का भी चर्चा हुआ है, वो है काल, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ काल के परिप्रेक्षित में ही हो रहा है। काल हमारा स्थिति काल के अनुसार होता है। 60 साल तक जिए थे, इसका मतलब ये 60 साल जो समय है, इस समय तक शुरू से लेकर एंड तक वो था 7 साल। कोई व्यक्ति हो सकता है कि 150 साल, 200 साल, 2000 साल भी जिंदा रह सकते हैं। तो समझना होगा कि इसका मतलब ये काल, इस काल के परिप्रेक्षित में उनका स्थिति इस जगत में हुआ था। काल और कर्म, कर्म है, हम जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें कर्म का फल मिलता है। इस भौतिक जगत में सुख और दुख कैसे आता है, ये कारण की तो ये विषय क्या बहुत कठिन है नहीं, अगर हम सही रूप से इसको अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे तो इतना ही वो आसान हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न है किसी को? कोई So let me see if I can come again. Hare Krishna. सब ठीक से रहना और बहुत अच्छा से